बाइडन साहब से हुई थी और उन्होंने बाइडन साहब के साथ बहुत ज्यादा एतराज किया था कि आपकी इंतहाई इनसेंसिटिव जो थी वो स्पीच थी और उसके अंदर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। बाइडन साहब ने इन जो अमेरिकन पाकिस्तान जो मुस्लिम्स थे उनसे माफी मांगी, उन्होंने कहा कि मैं सॉरी हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई ओन सेल्फ, ये तक बाइडन साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि आई विल डू बेटर। तो अब वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है जी कि विद इन द सर्कल जो बड़े क्लोज सर्कल है व्हाइट हाउस में और जो बाइडन साहब के कुछ लोग उनको कुछ कहते हैं, जो ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं वो कोई बात करते हैं टू बी कंजर्वेटिव यानी के, और जो यंगस्टर्स हैं कुछ उनकी अब टीम के अंदर वो उनको कुछ और कहते हैं, तो वो ज्यादातर बातें अब उनकी सुनते हुए कभी कभी इस तरह की बात कर देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो एंटी सेमेटिक इनके जो कॉमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक हैं और प्रेसिडेंट साहब सही कर रहे हैं। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि जब आदमी इतनी बड़ी पोजीशन पे होता है तो उसको बहुत सेंसिटिविटी के साथ और बहुत ध्यान से बात करने की जरूरत है, खास तौर पे वो बात करने की जरूरत नहीं है जो अनवेरीफाइड हो। तो आज ये काफी इनके ऊपर आया है एतराज। द इंटरसेप्ट की आज रिपोर्ट है जी और ये भी अगेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक व्हाइट हाउस ने आज कहा है कांग्रेस को के जो ये एक वेपन स्टॉक पाइल होता था जिसको के बहुत ही एहतियात से यूज कर सकता था इसराइल, उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा लें। इंटरसेप्ट की ये रिपोर्ट कहती है अगर ऐसा हो गया, अगर ये ग्रांट दे दी गई इसराइल को, तो बहुत ही हाई पावर्ड यूएस वेपन्स जो के ऑलरेडी भी ये लोग बड़ी लो कॉस्ट पे खरीदते थे उसके लिए एक फ्री फ्लोइंग पाइपलाइन खुल जाएगी, ये जितना अमेरिकन असला चाहेंगे ये वहां से ले सकेंगे और ये उसको यूज कर सकेंगे। 1980s में ये सेट किया गया था वॉर रिजर्व स्टॉकपाइल एलाइज इसराइल, इसराइल बेस्ड यूएस वेपन्स, और इसके अंदर उन्होंने रखे हुए थे बहुत ही हाई लेवल स्मार्ट बॉम्ब्स, मिसल्स, मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट, और इसके ऊपर कर्ब्स लगाए हुए थे कि इसराइल सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़े से ही चीजें जो हैं वो लेके जा सकता है। पेंटागन ने कहा था कि ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि अगर कोई रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और हमको फॉरन रेडी वेपन्स चाहिए हुए तो हम उसको यूज करेंगे। लेकिन व्हाइट हाउस ने ये जो रिक्वेस्ट की है ये इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करेगी। ये जो WRSA-1 स्टॉक पाइल है ये इसमें से कोई भी फिर अब इनको चीज चाहिए होगी इसराइल को तो वो लेके ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं यूज कर सकेंगे। ऑलरेडी भी इंटरसेप्ट कहता है कि 3.8 बिलियन यूएस डॉलर की मिलिट्री एड जो है यूएस इसराइल को देती है जो कि किसी भी और कंट्री को नहीं देती, और ये हाई पावर्ड यूएस वेपन्स भी अगर इनके हाथ में पहुंच गए तो फिर आप सोचेंगे क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक आज रिपोर्ट है। अच्छा जनाब, प्रो खालिस्तानी जो है एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज जो इंडिया के एम्बेसडर है न्यूयॉर्क में तरनजीत सिंह संधू उनको जरा घेरा। वो आज यहां पे आए थे एक गुरुद्वारे के अंदर और उनको जितने भी सिख थे उन्होंने घेर लिया और उन्होंने कहा जी कि आप इस चीज का जवाब दें कि ये जो आप इधर जो हमारे गुरुद्वारा में आए हैं हिकल्सविली में न्यूयॉर्क में, तो आपकी गवर्नमेंट का और आपका क्या कहना है हरदीप सिंह निजर की डेथ के लिए, और ये जो आपने पूरी कैंपेन चलाई हुई और जो प्लॉट अभी FBI ने ये जो अनअर्थ किया है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का, उसके बारे में आपका क्या जवाब है। इनके पास जाहिर है कि जवाब कोई नहीं था और सवाल जो है वो इतने इंटेंसिफाइड हो गए कि वहां से फिर जो है इंडियन एम्बेसडर साहब जो हैं इनको तरनजीत सिंह संधू इनको वहां से भागना पड़ा अपनी जान बचा के। इस मौके पर बात करते हुए वहां पर जो हिम्मत सिंह हैं जो कि ये प्रो खालिस्तानी सिख जो हैं जिनको के लीड करते हैं, उन्होंने कहा जी मैंने तो एक छोटा सा सवाल ही पूछा था, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो एम्बेसडर साहब हैं वो इतने एनॉय क्यों हो गए और यहां से चले क्यों गए, वो सवाल एक किया था उस सवाल का वो जवाब दे देते, तो उन्होंने इसका कोई नहीं दिया। इसके अलावा जो गुरप्रताप सिंह पन्नू हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं उन्होंने कहा जी कि अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस जो सिटीजन हैं वो अगर पीसफुली किसी से क्वेश्चन करते हैं नो मैटर उसकी पोजीशन गवर्नमेंट में क्या है तो उसका जवाब देना उनके लिए लाजमी है और हम हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुझे पता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट कराना चाहती है और लेकिन फिर भी मैं जो खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग है उसको मैं नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं जो यूएस की जो फेज है उसको January 28, 2024 से सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया से फिर से शुरू करूंगा। और जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबोब. आपको पता ही है नान एंड कबोब की नई लोकेशन आ चुकी है. इनका नंबर है 416-285-8191. आप इनकी नई लोकेशन 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा में जा सकते हैं. और जनाब चांदनी विक्टोरिया बहुत ही जबरदस्त बैंक्वेट हॉल है, 1400+3.5. याद रखें यहां पे आपने जब भी पार्टी करनी है 1400 लोगों की, 3.5 बंदों को और भी बुलाना है आपने. अब आप समझ ही गए होंगे कौन है. 32+ इसके अंदर जो है लग्जरी रूम्स हैं और आप अपनी हर तरह की फैमिली की और बिजनेस की यहां पे मीटिंग्स और इवेंट्स करा सकते हैं. इनका नंबर है 6479653823. अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आप इनको कॉल कर सकते हैं. और जनाब ओंटारियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विरिज टेस्ट, इसके ऊपर आप जाके खाना खा सकते हैं. इनकी भी नई लोकेशन जो है वो आ गई है ओकविल में, 2294 लेक शोर रोड वेस्ट. इनको आप कॉल कर सकते हैं 9052262294. एंड ग्रिल एंड चिक, इनकी भी नई लोकेशन आ गई है. पहले ये ब्रैम्पटन में थे 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट पे, अब ये मिसिसागा में भी हैं 3525 प्लेटिनम ड्राइव. अगर आपको इनके साथ भी ऑर्डर डालना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 9056062345.
और राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक की भी बात करते चलो, मेक्स विद मेकर्स ऑफ परफेक्ट टच इनका कहना है. लेटेस्ट 3D कंप्यूटर डिजाइन, किचन बाथरूम काउंटर टॉप्स क्लोजेट रेनोवेशन एंड किसी भी किस्म की रेनोवेशन चाहिए हो तो आप जनाब सैफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. राइट कस्टम कैबिनेटरी इंक के 6478473 इनका फोन नंबर है. एक्सक्यूज मी, डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा में डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं और दोनों लोकेशन इनकी ब्रैम्पटन के इलाके में है. डॉक्टर नाजिया रहमान हमारी और आपकी डेंटिस्ट. आपके या आपके घर में किसी की भी दांतों में कोई खराबी है तो सब आप डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा के डॉक्टर नाजिया रहमान से कॉन्टैक्ट करें. 9058721100 इनका फोन नंबर है. हेयर मैक्स के जनाब शिराज रहीम कहते हैं कि आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो गई हो तो सब आप हेयर मैक्स के शिराज से कॉन्टैक्ट करें और साजो आवाज का हवाला देने पर आपका हेयरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा. 4167928792 इनका फोन नंबर है. जी
हाँ जी, पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब वो यूएई में आज पहुंचे हुए हैं. वहां पे उनकी मुलाकातें जो हैं यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अबूधाबी में हुई हैं और इन्होंने बायलैटरल टाइज को और बढ़ाने के लिए जो है वो बात की है और इनके बीच में कुछ एमओयूज भी साइन किए जा सकते हैं इन ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स और जो कि पोर्ट से रिलेटेड हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, एविएशन. जिस वक्त आज ये पहुंचे यहां पे अल बतीन एयरपोर्ट पे तो इनको आज रिसीव किया वहां के जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवद अल नुएमी और इसके अलावा पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स भी यहां पे पहुंचे हुए थे. ये अब पार्टिसिपेट करेंगे यूएई का जो 52nd नेशनल डे सेलिब्रेशन है जो कि डिसंबर 2nd को होगा उसको और इसके अलावा जो 28th मीटिंग हो रही है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 दुबई में, उधर भी फिर ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे. उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए 90 हेड्स ऑफ द स्टेट आ रहे हैं, 7000 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वहां पे यूएई के अंदर कंटिन्यू रहेगी नवंबर 30th से दिसंबर 12th तक, लेकिन उसके बाद कुछ मीटिंग्स जो हैं 15 दिसंबर तक भी चलती रहेंगी. आज एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है जी उसने अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो जारी किए हैं पीएमएलएन की लीडर जो हैं मरियम औरंगजेब और इसके अलावा उनके जो साथी हैं एक मियां जावेद लतीफ साहब उनके लिए भी. उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो है बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के कहने के ऊपर इमरान खान साहब के लिए बहुत ही गंदी किस्म की लैंग्वेज यूज की थी तो ये जो है उसमें आती है हेट स्पीच के अंदर आती है और इनके वैसे तो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि इनको पहले भी कोर्ट में बुलाया था और ये आए नहीं थे. तो आज जो ATC के जज हैं अबहर गुल अहमद गुल खान उन्होंने कहा जी जो SHO है इलाके का कि इनको पकड़ कर लेकर आए और डिसंबर 9th को इनको प्रोड्यूस किया जाए और इन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि जो PTV के MD हैं सोहेल खान जिन्होंने की इजाजत दी कि इस तरह की हेट स्पीच जो है वो इमरान खान के लिए ये कंटिन्यू करें तो इसलिए इन सबको जो है अदालत में बुलाया जाता है ताकि ये उसका जवाब दें कि इन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए ऐसी बात क्यों की. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जी आज हियरिंग जो है वो एडजर्न की है. नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स थी अगेंस्ट हिज कन्विक्शन इन करप्शन केसेस टिल नवंबर 29th और ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन हसन औरंगजेब जो थे ये इनकी अपील सुन रहे थे। और जुलाई 2018 में नवाज शरीफ साहब को 10 साल की जेल दी गई थी एवन फील्ड रेफरेंस केस के अंदर बाय नैब, और फिर उसके बाद अल अजीजिया स्टील मिल करप्शन केस में भी इनको 7 ईयर्स की जेल दी थी, और इनको कहा था December 24, 2018 में, और इनको फाइन्स भी दिए थे 1.5 बिलियन और 25 मिलियन डॉलर्स के, 1.5 बिलियन रुपीज 25 मिलियन डॉलर्स के। तो उन्होंने कहा था कि इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी कहा जाएगा क्योंकि ये चले गए थे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए लंदन 2020 में, और उसके बाद फिर ये अदालत में के सामने आए नहीं थे। तो जब ये वापस आए अब 4 साल के बाद, तो उन्होंने अपनी अपील डाली थी कि मेरे ये केसेस खोले जाएं। आज ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने जो जितने भी लीगल टीम थी उसके साथ आए थे, जिसमें कि आजम रजा तारर भी थे, और आजम तारर भी थे यहां पर उनके साथ। तो वो कह रहे हैं जी मेरे केसेस को फिर से सुने। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है जी, उसने नैब की एक रिक्वेस्ट जो थी जिसमें कि कहा गया था कि इमरान खान साहब का फिजिकल रिमांड एक्सटेंड किया जाए, उसको जो है रिफ्यूज किया है, बल्कि उन्होंने कहा जी कि जुडिशियल रिमांड में हम इनको भेज सकते हैं फॉर अलकादर ट्रस्ट केस में। अकाउंटेबिलिटी जज मोहम्मद बशीर ने ये डायरेक्टिव्स जो हैं उस वक्त दिए जब ये हियरिंग कर रहे थे अडियाला जेल के अंदर। इससे एक दिन पहले नैब की टीम ने विजिट किया था इमरान खान को जेल में और उनको काफी इंटेरोगेट किया था। आज इमरान खान की वाइफ और इनकी लीगल टीम जो थी कोर्ट के सामने आई थी, 5 मेंबर नैब टीम जो थी वो भी यहां पर मौजूद थी। इमरान खान साहब के काउंसिल सरदार लतीफ खोसा ने मीडिया से बाद में बात करते हुए कहा कि फिजिकल रिमांड एब्सोल्युटली अननेसेसरीली है, मैं तो कब से ये कह रहा हूं। और इन्होंने एक्यूज किया नैब को कि ये एक अदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और वेंडेटा के लिए अब यूज किया जा रहा है और अपनी ये इफेक्टिवनेस खो बैठा है, इसके अलावा इसको मैनिपुलेट किया जाता है अपने गेन्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो सकेगी अगर -1 या -2 स्ट्रैटेजी को लेकर आए और अपोजिशन जो है उसको दबाने की कोशिश की। आज इमरान खान का साहब के जो फॉर्मर एडवाइजर हैं शहजाद अकबर साहब जो कि लंदन में रहते हैं, उनका कहना है जी कि उनके ऊपर आज एक एसिड अटैक हुआ। एक लड़का जो है हेलमेट पहने हुए उनके घर के दरवाजे पे आया, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने इनके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की। वो ज्यादातर तो एसिड जमीन पे भी गिरा लेकिन कुछ इनके ऊपर भी गिरा, जिसकी की वजह से ये जख्मी हो गए हैं काफी, और काफी नहीं बस मतलब फिर भी जख्मी हैं एसिड गिरने से जाहिर है। और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ और बच्चे जो हैं वो सेफ हैं इसके अंदर, ये एक छोटे से विलेज में आउटसाइड लंदन शिफ्ट हो गए थे और उनको बड़ी हैरत हुई कि ये मेरा एड्रेस किसने इनको दिया है। और वो कहते हैं जी कि मैं 1.5 महीना पहले वहां गया था, तो हो सकता है मेरा एड्रेस लीक कर गया हो, तो ये आदमी जो है इसने आके मेरे पे आज अटैक किया। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई थी और उसके मुताबिक 2 लोगों की डेथ हुई है और 10 लोग जिसमें के 3 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स हैं वो भी सुसाइड अटैक के अंदर आज जख्मी हुए हैं, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे बाका खेल एरिया में जो खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू एरिया है वहां पे किया गया था। ये जो सुसाइड बॉम्बर था इसने अपने आप को डेटोनेट किया था सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर, और ये अफिलिएटेड है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से, और ये जो लड़का है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अफगान नेशनल। इससे पहले भी लास्ट नाइट 8 मिलिटेंट्स जो थे उनको एक इंटेल बेस्ड ऑपरेशन के अंदर सरगोदा एरिया जो साउथ वजीरिस्तान का है उसमें मारा था जो है पाकिस्तान आर्मी ने। वेंसडे को 2 सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हुई थी जब एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर किया गया था, एक्सप्लोड किया गया था रजमक एरिया का जो केपी का नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया वहां पे भी। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट, पता नहीं अब जनाब ये कहां पे रुकेंगी जाके। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड दिस इज रिटन बाय कंचा इलिया शेपर्ड। और इसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि जब से आरएसएस बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत जो है वो उसमें आई है 2014 में, और इन्होंने कहना शुरू किया है सबका साथ सबका विकास, तो ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है क्योंकि इंडिया का जो गरीब है वो तो गरीब का गरीब ही है और नेशनल इकोनॉमी जो है वो गरीबों को, ये जिसमें कि शूदर दलित आदिवासी हैं, इनको बिल्कुल भूलती जा रही है। और इनका विजिबली विकास जो नजर आ रहा है, यानी इनको जो रिलीफ मिलनी थी वो इनका विकास या इनकी कोई रिलीफ जो है नजर नहीं आ रही है। तो वो कहते हैं जी कि मुझे तो लग रहा है कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये बनिया ब्राह्मण इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए चलाई जा रही है, और इसके अंदर जो इवन रिजर्व जॉब्स थी दलित आदिवासी ओबीसीज इन सब के लिए खत्म की जा रही हैं, और ये ब्राह्मण बनिया डेवलपमेंट इकोनॉमी जो है इंडिया बनती जा रही है। इसके अंदर सिर्फ जो बड़ी बड़ी फैमिली जो कि विजया फैमिली के जैसे लोग हैं जो कि प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, उनको जो है बड़ी बड़ी पोस्टें भी दी जा रही हैं और सारे फायदे भी दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इनके ताल्लुकात जो हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट उनके जो हैं बड़े बड़े लोन्स भी माफ करते जा रही है। लेकिन अगर कोई छोटा सा भी लोन दलित शूदर या आदिवासी का होता है तो उसको जो है वो नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं जी कि गुजराती बनिए और मारवाड़ीज जो हैं वो तक भी जो हैं इतने ज्यादा अब गवर्नमेंट के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े नाक किस्म के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका के नाम उन्होंने लिया है उसमें वो कहते हैं जी अंबानी, अदानी, विदांता, लक्ष्मी मिट्टल और इस तरह के ये लोग हैं जिनको के वो कहते हैं जी कि मैं बनिया इंडस्ट्रियलिस्ट कहूंगा। वो कहते हैं जी कि इसके अंदर और भी लोग अब शामिल होते जा रहे हैं जिनका के हाई कास्ट से ताल्लुक है, जो कि ब्राह्मण है, बनिया है, कश्था है, खत्री हैं और क्षत्रिय हैं। इन सबको जो है ज्यादा फैसिलिटीज रही हैं और जो बेचारे ये शूदर, दलित, आदिवासी वगैरह जो हैं ये तो इकोनॉमी में बिल्कुल ही कहीं पे नजर ही नहीं आ रहे हैं, ना तो गवर्नमेंट इनके अंदर इन्वेस्ट करने में बिलीव करती है ना कर रही है और इनका कुछ जो है भला होता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो कहते हैं जी कि इवन जो रिचेस्ट शूदर कास्ट हैं जैसे कि पाटिल्स हैं, मराठाज हैं, जाट हैं, रेड्डी हैं, नायर हैं, उनको भी वो हिस्सा नहीं मिल रहा है जो कि इन बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है। तो वो कहते हैं जी कि ये डेवलपमेंट जो है कुछ लोगों के लिए है, ये सारे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। लेकिन लगता ऐसे ही है कि गवर्नमेंट जो है उसका फोकस ही नहीं है उनके ऊपर, उनका फोकस बस अमीर अमीर रिच लोगों के ऊपर है हिंदुस्तान में, जिसमें कि वो कहते हैं जी बड़े बड़े हाईवेज बनाओ, बड़े एयरपोर्ट्स बनाओ, वंदे भारत बनाओ, स्टेडियम बनाओ ताकि हमारे काम जो है वो नजर आए। लेकिन जहां पर रिलीफ गरीब आदमी को देने का होता है उसमें कोई उनका काम नजर गवर्नमेंट का नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमी कभी भी क्लैप्स कर सकती है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है जी उसने 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं उसको जो है एंटी टेरर लॉ के अंडर उस वक्त अरेस्ट किया है जब वो कहते हैं जी कि ये प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगा रहे थे जब इंडिया का लॉस हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर। इनके खिलाफ जो है एफआईआर लिखी गई थी गंदरबाल पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 13 एडवोकेटिंग अबेटिंग इनसाइटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यूएपीए जिसको कहते हैं। और वो कहते हैं जी कि ये जो है कुछ ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट्स थे हॉस्टल के अंदर जिन्होंने के बड़े नारे लगाए और ये जो है सारे स्टूडेंट्स थे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और इसमें कुछ जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने फिर इनकी फिल्म बनाई और पुलिस को जाके दी जिसके ऊपर इनको पकड़ा गया। और बहुत सारे ये बच्चे जो इनकी तो अब डिग्री कंप्लीट भी होने वाली थी लेकिन अब पता नहीं अगर इनको बंद कर दिया गया तो ये कर भी सकेंगे या नहीं। पंजाबी सिंगर एक्टर जो है गिप्पी गिरेवाल आपको पता ही है बड़े मशहूर हैं। वैनकूवर में जो इनका घर है कुछ दिन पहले उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो कहते हैं जी कि मुझे बड़ा हैरत हुई कि मुझे अटैक मेरे पे क्यों किया गया क्योंकि इनकी एक तस्वीर सलमान खान के साथ जो थी वो वायरल हो गई थी। वो कहते हैं सलमान खान तो मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, मैं मेरी तो टोटल सलमान खान के साथ 2 दफा मुलाकातें हुई हैं। एक दफा ट्रेलर लॉन्च था पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा का और प्रोड्यूसर इनको जानता था, उसने इनको बुलाया था। और एक दफा मेरी मुलाकात इनके साथ बिग बॉस के सेट पे हुई थी। तो ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, तो मैं बड़ा शॉक्ड हूं कि मेरे ऊपर क्यों अटैक किया गया है। इसकी जो जिम्मेदारी थी वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है और उसने अपने फेसबुक पे लिखा कि तू सलमान खान को अपना भाई समझता है, आप भाई को अपने को बुला ले अपने आप को सेव करने के लिए। और ये मैसेज सलमान खान को भी मैं दे रहा हूं कि इस धोखे में ना रहना कि दाऊद तुझे आके बचा लेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। और तेरा जो रिस्पांस था सिद्धू मूसा वाला की डेथ के लिए वो अननोटिस नहीं गया, अब तुम जो है हमारे रेडार के ऊपर हो। ये लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कह रहा है इनको सलू भाई को कि तुम हमारे अब रेडार के ऊपर हो। और ये तो अभी ट्रेलर था, अभी फिल्म पूरी आनी बाकी है। और तुम किसी भी कंट्री में भाग के चले जाओ तो याद रखना कि डेथ को वीजे की जरूरत नहीं होती है, वो तुम्हारे पीछे अनइनवाइटेड आएगी। आपको पता ही है कि इससे पहले भी सलमान भाई को जो है हमारे सलू भाई को ये इस तरह के थ्रेट्स मिले थे तो कहा गया था कि आपकी हम सिक्योरिटी इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन सलू भाई बड़े दिल वाले हैं, वो कहते हैं मुझे जिस दिन मौत आनी है मुझे इतनी ज्यादा अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ऐसे आज जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई जब जोया अख्तर ने मुझे कहा कि मैं गली बॉयज जो है वो मैं बना रही हूं, क्योंकि जिसमें कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट 2019 की बड़ी हिट फिल्म ये गई थी जिसका गाना वो बड़ा मशहूर हुआ था अपना टाइम आएगा। तो वो कहते हैं जी कि मुझे बड़ी हैरत होती है थी कि ये तो बैंड स्टैंड में रहती थी जो कि बड़ा हाई एंड एरिया है और हॉलिडे करने के लिए लंदन, यूएसए और हांगकांग जाती है, तो इसको कैसे समझ आएगा कि ये जो लोग स्लम्स में रहते हैं इनकी हालत क्या है। तो वो कहते हैं जी मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने इसकी ये फिल्म देखी क्योंकि जोया ने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, क्योंकि जो स्लम लाइफ की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक है वो तक इसने अपने कैरेक्टर्स के और उसमें सारी फिल्म के थ्रू शो करने की कोशिश की और जो कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप था उसको बहुत अच्छे से पेश किया। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट। और जनाब मनोज बाजपाई साहब 54 ईयर्स एज है उनकी और अभी भी ही इज गोइंग स्ट्रांग. IFFI जो गोवा में जो फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसके अंदर जो है ये देखेंगे, उसमें इंटरव्यू इनसे कुछ लोगों ने लिया. उन्होंने कहा जी कि आप तो अब बिल्कुल मेन स्ट्रीम फिल्मों के अंदर नजर ही नहीं आ रहे हैं, आपकी सिर्फ दो ही फिल्में आई हैं गुलमोहर और सिर्फ एक बंदा काफी है. तो वो कहते हैं जी कि मुझे मेन स्ट्रीम में कोई ना जाने का इतना अफसोस भी नहीं है क्योंकि OTT पे अब मैं काफी नजर आ रहा हूं और मैं उसकी वजह से मेरे पास टाइम होता है तो बिकॉज ऑफ दैट मैं इंडिपेंडेंट फिल्म बना सकता हूं. लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ढूंढना कितना मुश्किल है और क्योंकि मेन स्ट्रीम जो है सिनेमा उसको समझ नहीं आती है कि वो मनोज बाजपाई से क्या करवा सकता है. इसीलिए मैं बहुत ही अनकन्वेंशनल रोल्स करता हूं. मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे सिर्फ विलन के रोल में जो है वो लेना चाहता है और विलन का रोल मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं करता था. तो आई एम हैप्पी जो कुछ भी मैं कर रहा हूं जितना मैं कर रहा हूं. हाँ जी. और जनाब आज जूड बेलिंगहैम सिर्फ 20 ईयर्स एज है इनकी और इन्होंने आज जितने बड़े बड़े सॉकर के दिग्गज प्लेयर्स हैं उनके आज इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े जनाब. ही हैज आउटक्लास्ड ना सिर्फ ये रोनाल्डो बल्कि स्टेफानो एंड सैंचेज को जिन्होंने के 13-13 गोल्स बनाए हैं और इसने बनाए हैं 14 गोल्स रियल मैड्रिड के साथ फॉर द इन हिज फर्स्ट 15 मैचेस. और अभी ये सिर्फ आप सोचें 20 साल के हैं. इनका जो क्लब है ये जीता था अभी 3 गोल से कैंडिस के अगेंस्ट, तो इसमें इनकी बड़ी शानदार थी परफॉर्मेंस थी. इनको साइन किया गया था वाइट्स जो थे उन्होंने साइन किया था ह्यूज 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 फीस पे 103 मिलियन यूरोस के ऊपर, लेकिन इन्होंने बता दिया कि ही इज वर्थ इट. और ये जितने भी ग्रेट्स हैं इनके अब ये इसने अभी 20 साल की उम्र में स्कोर तोड़ दिए हैं तो अब आप सोचें कि आगे जाके ये क्या कर सकता है. पाकिस्तानी क्रिकेटर जी इमामुल हक साहब की वीकेंड के ऊपर हुई शादी और शादी की तो जहां पे बात होनी हुई हुई थी जो ड्रेसेस दुल्हन ने पहने, दुल्हन के ड्रेसेस के ऊपर तो दुनिया भड़क गई और फिर लोगों ने डिग किया और फाइंड आउट किया कि भाई ये जो खातून है वैसे तो ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और इमाम जो है इनको बड़े अरसे से जानते थे. तो इनके ये ड्रेसेस किसने बनाए हैं, तो वो कहते हैं जी कि मेहंदी के ऊपर जो नॉर्वे में हुई थी वहां पे क्योंकि ये रहती हैं वहां पे इन्होंने रेड और रस्टी कलर का जो लहंगा पहना था जिसके के अंदर गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी थी. दिस ड्रेस वॉज प्रिपेयर्ड बाय हसन शहरयार यासीन और इसकी कीमत सिर्फ 1.5 मिलियन रुपीज थी, 15 लाख का था सिर्फ. ठीक है जी. हाँ, कवाली का जो इवेंट लाहौर में हुआ उसमें जो इन्होंने वही हसन शहरयार यासीन का जो ड्रेस ब्लैक एंड ग्रे पहना उसकी कीमत सिर्फ 850,000 रुपीज थी. निकाह के ऊपर जो इन्होंने पिंक एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी पहनी जो कि कहा जा रहा था कि कैटरीना कैफ की वेडिंग ड्रेस से इंस्पायर्ड है, उसको बनाया था जैनब सलमान ने और उसकी कॉस्ट पता नहीं चली है. लेकिन वलीमा जो हुआ था लाहौर में उसमें इन्होंने पहना था लाजवंती का ड्रेस जिसकी की कीमत सिर्फ 1.7 मिलियन रुपीज है. तो बहरहाल जी हाँ पीनट्स इनके लिए तो मतलब
है आपकी पोंचो की क्या कीमत है.
हाँ पोंचा तो बहुत पोंचा हुआ है ना मजा भाई, उसकी कोई कीमत सीमित नहीं होती ना, वो तो पोंचा हुआ ऑलरेडी है जी. तो बहरहाल जी इमाम साहब को लोगों ने कहा जी शादी की बहुत बहुत बधाइयां लेकिन नवंबर 28 को आपने वापस आ जाना है क्योंकि टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जा रही है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए. तो पैन दो दिन मजा करना है जरा कर लो उसके बाद चलो वापस आ जाओ. एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट विकेट कीपर बैटर आजम खान. आजम खान साहब को आज बड़ा जो है उन्होंने PCB ने इनको 50% ऑफ अपना मैच फी जो है वो देने के लिए कहा. ये मैच खेल रहे थे T20 कराची वाइट्स की तरफ से कराची के अंदर, लेकिन इन्होंने अपने ड्रेस के ऊपर डिस्प्ले किया था पैलेस्टीनियन फ्लैग. और PCB जो है वो कहती है कि इन्होंने क्लोथिंग और इक्विपमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट किया है और ये इनको डिस्प्ले करना अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि सिर्फ अप्रूव्ड लोगों ही जा सकते हैं. अकॉर्डिंग टू ICC लॉज कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस रेशियल मैसेज जो है वो आप कैरी नहीं कर सकते हैं अपने क्रिकेट के गियर के ऊपर. और अभी इन्होंने 35 रन ही बनाए थे लाहौर ब्लूज के अगेंस्ट जब इनको रेफरी ने मोहम्मद जावेद जो थे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आप ये अपना रिमूव करें, आपको पहले भी वार्निंग दी गई थी कि आप पैलेस्टाइन का फ्लैग अपने बैट के ऊपर कैरी नहीं कर सकते हैं तो ये आपने क्यों कैरी किया है. तो बहरहाल जी इन्होंने जाहिर इनके पास कोई जवाब नहीं था तो ICC के रूल्स के अगेंस्ट है तो बस जी इनको. लेकिन लोग जो है बड़े खफा हैं, वो कहते हैं जी PCB को ऐसे नहीं करना चाहिए. भाई PCB तो अंडर ICC रूल्स है ना, ICC रूल्स उसने फॉलो करने हैं ना. तो वो बस जी बहरहाल इनको कहा गया कि आपकी जो मैच फी है 50% आपको देनी पड़ेगी. तो ये जी थी हमारी गर्मा गर्म हर में
अकॉर्डिंग टू लॉ.
अकॉर्डिंग टू लॉ मौजूद
अकॉर्डिंग इसमें कोई वो किसी पे पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग कल के दिन कोई और भी कुछ और
भाई आईसीसी आपकी पूरी टीम के ऊपर अगर बैन लगा दे और बोले कि पाकिस्तान की टीम खेलेगी ही नहीं किसी टूर्नामेंट में फिर आप क्या करोगे
अगर पूरी की पूरी टीम ऐसी हरकत करती तो यस दैट कुड हैव बीन पॉसिबल मगर एक इंडिविजुअल ने किया है उसके ऊपर जो उन्होंने फाइन
वार्निंग दी है उसको वार्निंग
छोटा मोटा फाइन लगाया इनके लिए बड़ा फाइन होगा ये
50%
फी या तो उसके लिए तो
रूल्स तो रूल्स ही है ना जी रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे
नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट चाहे आज इसको अलाउ कर देंगे तो कल के दिन कोई और भी मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे
बिल्कुल बिल्कुल
तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे इसको मना कर दिया एंड आई डोंट
आपको पता है कि जिस वक्त रिजवान ने सजदा किया था और उसने कहा था कि ये मैं अपना जो मैच है जो मैं जीता हूं वर्ल्ड कप के बीच में मैं पैलेस्टीन हूं तो उसके ऊपर भी बड़ा एतराज आया था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप नहीं बना सकते हैं ऐसे राइट इन द मिडल ऑफ वो और वैसे भी जो प्लेयर्स होते हैं उनको वो कहते हैं जी कि पॉलिटिक्स से
उन्होंने सजदे को नहीं रोका उन्होंने कहा कि ये जो कमेंट्स दिए हैं आपने
हाँ ये ठीक नहीं है
वो सही नहीं है
हाँ हाँ जी
ठीक हो गया और कुछ
बस माजिद भाई होर जे होर कणिया सुननी है तुसी होर सुननी है तुसी
नहीं मगर नेक्स्ट टाइम अगर जब आप पहुंचो पहने ना
हाँ कंबल पहन के आए नहीं नहीं आप कंबल ही के माजिद भाई आपको कंबल आसान रहेगा बोलना
अच्छा जो कंबल पहन के आए ना तो इसके ऊपर अपने जरा वो जो डायमंड ज्वेलरी है ना ज्वेलरियात
हाँ
तो वो जरा लगा क्या जाएगी
नहीं हमने ये जो पहने हुए हैं तो आपको नजर ही नहीं आ रहा
आपके बाल आ गए ना वहां पर
अच्छा अच्छा अच्छा
लुक एट वेरी गुड
ओके थैंक यू
वेरी गुड एज यूजुअल ये थी हमारी आज की न्यूज
एंड
इंशाल्लाह ताला थैंक यू सो मच और बकिया की कहानी इंशाल्लाह ताला कल हम आपके लिए पेश करेंगे जो भी न्यूज होगी अब से लेके कल 4 बजे तक की न्यूज जो है आपके लिए ताजा तरीन खबरें हम पेश करेंगे फिलहाल मैं आपको लिए चलता हूं प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद समाप्त
चांद का रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू सवार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा सुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का हर शाम की चादर काली साया बालों का। हरे सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुकड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना के ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
चल हल्के हल्के, रह जाते हो क्यों पलकों से मलके। के धारे दिल पुकारे आरे आरे आरे
चुप है वो। निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं, जमाना है तुम्हारा जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो अगर मेरा कहा मानो, तो ऐसे खेल ना खेलो तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है, ये भोलापन तुम्हारा ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की, ये भोलापन तुम्हारा ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की, नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी, बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी।
पहलू में पनाह ले लो, मेरी जलती हुई आँखों पे ये आँखें रख दो, ऐ मेरे प्यार के ख्वाबों की हंसी शहजादी, होंठ क्यों कांप रहे हैं जरा कुछ तो बोलो।
तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे,
तुमने पुकारा हम चले आए।
मुझको छू लो, मेरी नस नस में शरारे भर दो, मेरे दिलदार मेरी आँखों में रहने वाले, मैं तुम्हारी हूँ मेरी बाग में तारे भर दो।
तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे,
तुमने पुकारा हम चले आए।
रोशन है तुम्ही से मेरे अफसाने का, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने का, तुम अगर हमको न मिलते तो ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने का।
तुमने पुकारा चले आए, जान हथेली पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे,
तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे,
तुमने पुकारा
एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा हो गा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। कहोगे रो लेंगे अब रो
कहोगे रो लेंगे आंसू का हमारे गम न करो वो बहते हैं तो बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर मर भी गए तो देंगे दुआ उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर
कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ रहा है तुम्हें कुछ पता है कोई मिट रहा है तुम्हें कुछ पता है तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है तुम्हारा हुआ है तुम्हें कुछ पता है ये क्या